आप सबका भगवान श्री कृष्ण के धाम में स्वागत है। जहां भी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान होता है, उनके पवित्र नामों का उच्चारण होता है, वही भगवान का धाम है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवान श्री कृष्ण नारद को बताते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेश्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, बल्कि मैं उस स्थान में रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं पर रहता हूं जहां मेरे बारे में मेरे भक्त लोग बात कर रहे होते हैं। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये स्वभाव है, ये प्रवृत्ति है, हमारे अंदर भी है। हमारे बारे में अगर कोई बातचीत कर रहा है तो हम तुरंत वहां जाकर सुनना चाहते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण भी व्यक्ति हैं, जब देखते हैं कि कुछ मेरा नाम लिया जा रहा है तो वो भी तुरंत वहां आके बैठ जाते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का काम है, उनको कोई ऑफिस में जाना नहीं होता, दुकान में बैठना नहीं होता है, उनको कोई तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं होती है। वो केवल अपने भक्तों के साथ में बैठकर वो श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं और भगवान के भक्त भगवान का गुणगान करते रहते हैं। इस तरह से भगवान के धाम में सतत कीर्तन रहता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं कि हमें सतत भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, सतत हमें उनका गुणगान करना चाहिए। हम कहेंगे कि ये तो संभव नहीं है, कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त पांडवों के माध्यम से हम देख सकते हैं, इतने ही सारे शुद्ध भक्त थे और हुए हैं इतिहास में। उनमें से पांडव प्रमुख हैं। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का साथ पाया हर अवस्था में। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब सब कुछ बहुत विपरीत था, हर अवस्था में भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे। अगर पांडवों की भक्ति के बारे में चर्चा करनी है तो सारा महाभारत सुनाना होगा, वो तो एक प्रवचन में तो संभव नहीं है। लेकिन छोटी सी कोई घटनाएं सुनकर इससे हमें पता चल सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, वो पांडवों ने कैसे किया और पांडवों के जो रिश्तेदार थे, संबंधित थे, उन्होंने कैसे किया, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, हमेशा मेरा चिंतन मनन करते रहो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना पूजा करो, इस तरह से तुम मेरे पास लौट कर आओगे, ये निश्चित रूप से जान लो। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया तो आपको पता है कि कितने लाखों लाखों सैनिक मारे गए और खून की नदियां बह रही थी, इतने लोग मर गए एक साथ में। आजकल हमारे छोटे जो युद्ध होते हैं वो तो बहुत छोटे मोटे हैं, जैसे कि कोई सड़क के कोने में थोड़े लोग झगड़ते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो उस तरह के युद्ध होते हैं जिसमें कहीं कई हजार, थोड़े हजार, दूसरा विश्व युद्ध इसमें कितने लोग मारे गए होंगे, थोड़े हजार लोग मारे गए। लेकिन कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर लाखों करोड़ों की संख्या में सैनिक मारे गए जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो इतना सब, इतनी हिंसा के बाद महाराज युधिष्ठिर बहुत अस्थिर थे, अपने मन में बहुत दुखी थे कि मुझे राज प्राप्त करने के लिए इतनी हिंसा हमें करनी पड़ी, इतना खून हमें बहाना पड़ा केवल एक राज्य के लिए। और फिर महाराज युधिष्ठिर, कृष्ण और अन्य पांडव सारे मृत सैनिकों के श्राद्ध पिंड इत्यादि क्रियाओं के लिए वो गए, और सारे जब क्रियाएं हो चुकी तो वहीं पर बैठे थे और फिर चले आए। सब बड़े दुखी अवस्था में थे, और उस समय वेद व्यास और अन्य मुनि थे, कृष्ण भगवान ने भी सारे पांडवों को शांत करने का प्रयास किया, उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी थोड़ा बहुत बताया सुनाया, और इस तरह से पांडव और उनके सगे संबंधी थोड़े बहुत शांत हो गए। और इस तरह से जब वो लौट कर आए, जो आ ही रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने घोषणा की कि मैं अभी हस्तिनापुर छोड़कर वापस द्वारका जा रहा हूं, क्योंकि मेरा काम यहां हो गया और मेरे सगे संबंधी वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। यहां मुझे जो कार्य करना था सब मैंने खत्म कर दिया है। तो उसी समय उत्तरा वहां पर भाग के आ रही थी। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन थी। तो आप सबको मालूम है कि किस तरह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर उनका देहांत हो गया। उस समय केवल वो एक नव युवक थे। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बच्चा था। उत्तरा महाराज विराट की पुत्री थी। 13वें साल में, वनवास के 13वें साल में, जब पांडव विराट महाराज के राज्य में रहते थे, तो उस समय ये फैसला हुआ कि महाराज विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से होगा। तो जिस समय अभिमन्यु का देहांत हुआ रणभूमि पर, उस समय बच्चा उत्तरा के गर्भ में था, और अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से एकमात्र बचे हुए थे। तो अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आ चुका था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मेरे पिता और अन्य सारे जो कौरव हैं उनके प्रति बड़ा अन्याय किया गया है, और इसलिए मैं भी अन्याय करके ही पांडवों की हत्या करूंगा। और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र सबसे भयंकर अस्त्र था उस समय का, आजकल का जो अणुबम है उससे भी ज्यादा भयंकर। यहां आजकल का अणुबम जो होता है वो थोड़े हजारों लाखों लोगों को खत्म कर सकता है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र होता है वो प्राय सारे ब्रह्मांड को ही नष्ट कर सकता है। लेकिन इतनी सारी शक्ति होने के बाद भी ब्रह्मास्त्र को अगर कोई बहुत ही निपुण सैनिक हो तो वो उस ब्रह्मास्त्र को ठीक सीधे एक व्यक्ति की ओर ही केंद्रित कर सकता है, जिससे कि दूसरों लोगों का वध न हो, दूसरे लोगों को कोई नुकसान न हो, केवल उस व्यक्ति का नुकसान हो। तो ये इतनी पहुंचा हुआ विज्ञान था उस समय, धनुर्विद्या इतनी थी। तो उस समय उत्तरा को जब पता चला कि बहुत भीषण भस्मास्त्र उसकी ओर आ रहा है, तो भागते हुए कृष्ण भगवान के पास आई, त्राही त्राही मुझे बचाइए। और उस समय जब ब्रह्मास्त्र को देखा तो सारे पांडवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए। अर्जुन ने अपने धनुष बाण को हाथ में लिया, भीम ने अपना गदा हाथ में लिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र का सामना कौन कर सकता था? तो केवल कृष्ण कर सकते थे। तो कृष्ण ने अपने हाथों में सुदर्शन चक्र उठाया और कहा कि चिंता नहीं करो, मैं रक्षा कर दूंगा। और इसके बाद में बहुत रोमांचक कथा है जो बाद में भी आती है श्रीमद् भागवत में, कि स्वयं महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार करके उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अंदर जाकर उस बच्चे की रक्षा की और उसे ब्रह्मास्त्र से बचाया। उत्तरा का गर्भ नष्ट हुआ, लेकिन बच्चे का एक शरीर पे एक बाल भी नहीं हिला। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे की रक्षा की, और वो बच्चा आगे चल के परीक्षित का नाम लेने वाला था। उसका जन्म कैसे हुआ वो एक और सुंदर रोमांचक कथा है जो कभी और सुनाएंगे। लेकिन परीक्षित को बचाकर जब श्री कृष्ण और आगे बढ़े तो वहां पर पांडवों की माता कुंती महारानी खड़ी थी। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की भगवान श्री कृष्ण के प्रति। वो जानती थी कि श्री कृष्ण उनके भांजे होने के उनके भतीजे होने के नाते बावजूद वो परम भगवान है, इसलिए उन्होंने इसी तरह से उनकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्तुति सुनी, बड़े प्रसन्न हुए। वास्तव में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में सारा वैदिक ज्ञान छुपा हुआ है। जो वेदों को जानना चाहते हैं, वेदों के सार को जानना चाहते हैं, प्रभुपाद जी बताते थे, अगर उन्होंने केवल कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ी जो कि श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में आती हैं, तो उनको यह पता चल जाएगा कि सारे शास्त्र क्या कहते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। हालांकि वो बड़े कोई विद्वान नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में भक्ति भावना थी, इसलिए उन्होंने ऐसे सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण किए। भगवान ने इन प्रार्थनाओं को हल्के मुस्कान से स्वीकार किया। और उस समय जब वो आगे जा रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज सामने आए। युधिष्ठिर महाराज ने उनसे कहा कि कृष्ण थोड़े दिन और रह जाओ, अभी कृष्ण भगवान जब को निश्चय कर लेते हैं तो कौन उनको रोक सकता है। जब उन्होंने निश्चय किया कि हस्तिनापुर छोड़कर मुझे द्वारका लौटकर जाना है तो कोई उनको रोक नहीं पाता था। आखिर वो तो स्वयं भगवान है, पूर्ण स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उनके एक बार निवेदन करने से श्री कृष्ण ने उस बात को स्वीकार की और तुरंत उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। युधिष्ठिर महाराज की शक्ति क्या थी? क्या युधिष्ठिर महाराज की शक्ति इसमें थी कि उनके बाहों में बहुत शक्ति थी, बहुत बड़े मसल्स थे? क्या उनकी शक्ति यह थी कि उनके तीर, उनके बाण बहुत तेज थे? क्या उनकी शक्ति यह थी कि उनके पास तलवार बहुत तेज था? क्या शक्ति थी उनकी? उनकी शक्ति थी उनकी भक्ति। भगवान को वश में करने के लिए केवल भक्ति ही एकमात्र उचित और पर्याप्त साधन है। भगवान को कौन वश में कर सकता है, उनसे शक्तिमान कौन हो सकता है? केवल उनका भक्त। उनके भक्त के पास में क्या चीज होती है जो भगवान को वश में करती है? प्रेम, भक्ति। और इस प्रेम से भगवान श्री कृष्ण वश में किए जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में अपनी प्रार्थना में कहते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्त्य एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर ये प्रायसो जित जितो व्यसित स्त्रीलोक्याम। वो कहते हैं कि हे प्रभु, केवल अगर कोई व्यक्ति झूठे तर्क वितर्क का, वाद विवाद का पथ छोड़ दे और संतों के बीच में, भगवान के भक्तों के बीच में आकर आपकी कथाएं सुनता रहे, जीवंति सन्मुखरिताम, सन्मुखरिताम मतलब जो सत्मार्ग में चलने वाले हैं उनके मुख से, संतों के मुख से, अगर हम आपकी कथाएं सुने और ऐसा जीवन अपना बिताएं, जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ताएं, आपकी कथाएं सुनते रहें और उसी स्थान में रहकर, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मरोबिर, अपने कर्णों से, अपने तन से, मन से, बुद्धि से आपकी सेवा करें, तो ऐसे भक्ति से, ऐसे सेवा भाव से, ऐसे प्रेम से आप जीत लिए जाते हैं। भगवान का एक नाम है अजित। अजित मतलब जिसको, जिनको जीता नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी भक्त जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है तो उस प्रेम से वो अजित को भी जीत लेता है। यह है भक्ति की शक्ति। तो सबसे शक्तिशाली जो चीज है इस ब्रह्मांड में, चाहे इस भौतिक सृष्टि में या भगवान के धाम में, वो है भक्ति। क्योंकि संसार की और कोई भी शक्ति नहीं है जो कि भगवान को वश में कर सकती है। जो केवल एक साधारण अशिक्षित व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति, जो पंडित नहीं भी हो लेकिन जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, वास्तव में वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। न कि कोई बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन, कराटे चैंपियन, नहीं, एक सीधा साधा व्यक्ति, कोई महिला, कोई बच्चा, जिसके हृदय में भक्ति हो, भगवान की दृष्टि में वो शक्तिशाली कहलाता है। तो यही महाराज युधिष्ठिर की शक्ति थी। तो महाराज युधिष्ठिर ने एक बार कहने से कृष्ण भगवान वश में आ गए, इनकार नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण आखिर महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। आखिर भगवान किसके छोटे भाई हैं और किसके बड़े भाई हैं? भगवान तो भगवान है, सब कोई तो उन्हीं से आते हैं, वो तो सबके परम पिता है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः, वो कहते हैं मैं सबका पिता हूं, सबका माता हूं, सबका परम पिता हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो भले वो किसी के छोटे भाई कैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे लीला करने में रुचि लेते हैं, क्योंकि किसी के छोटे भाई बनने में, किसी के पुत्र बनने में, किसी के मित्र बनने में उनको ज्यादा आनंद आता है। और ऐसे अलग अलग तरह के संबंध स्थापित करके अपने भक्तों के साथ वो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और ऐसे आदान प्रदान से उनको बहुत आनंद मिलता है। इतना आनंद मिलता है जो कि बड़े बड़े स्तुति पाठ करने से भी नहीं मिलता। तो महाराज युधिष्ठिर के एक बार उनका हाथ पकड़ के आंखों में आंसू लेकर जब उन्होंने कहा कि हमारे संग में ठहर जाओ, तो कृष्ण भगवान ने कहा अवश्य, ना नहीं कर पाए। उधर वेद व्यास और अन्य मुनि, उन्होंने भी आकर कृष्ण भगवान की पूजा की। अब देखिए, कृष्ण भगवान तो क्षत्रिय थे, द्वारका के राजा थे, द्वारकाधीश, और हमारी वैदिक सभ्यता ये होती है कि ब्राह्मणों की पूजा क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को करनी चाहिए। कभी भी ब्राह्मण क्षत्रियों की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण क्षत्रिय थे, राजा थे द्वारका के, और इधर अन्य सारे ब्राह्मण, वेद व्यास भी, वो भी आके कृष्ण भगवान की पूजा करने लगे। तो प्रश्न ये आ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? बात सरल थी, क्योंकि ये जो ब्राह्मण थे वो प्रामाणिक ब्राह्मण थे। प्रामाणिक ब्राह्मण होने का मतलब क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो परम ब्रह्म, जो भगवान को जानते हैं, परम सत्य को पहचानते हैं, वो सही में ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये प्रामाणिक ब्राह्मण थे, इसलिए जानते थे कि ये केवल क्षत्रिय नहीं है, ये तो परम भगवान है, ये तो परम सत्य है, केवल एक क्षत्रिय का राजा की लीला कर रहे हैं ये। तो इसलिए पूर्ण ज्ञान में उन्होंने कृष्ण की पूजा की। कृष्ण भगवान ने इस पूजा को स्वीकार तो किया, लेकिन तुरंत कृष्ण भगवान ने भी उनके पैरों में प्रणाम किया। अब यह प्रश्न आ सकता है, ठीक है, ब्राह्मणों ने कृष्ण की पूजा की, हालांकि वो क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि कृष्ण भगवान है, यह समझ लिया, फिर कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण क्यों फिर से पकड़े? तो जवाब यह है कि पहले कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करते हैं, जिस तरह से भक्त कृष्ण की सेवा करते हैं, इसी आदान प्रदान में आनंद आता है कृष्ण को। और दूसरी बात यह थी कि कृष्ण भगवान एक क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, और इसलिए क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि ब्राह्मण की पूजा करें, तो इसलिए कृष्ण भगवान ने भी ब्राह्मणों की पूजा की। तो इस तरह से सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते रहे, जब तक कि वो इस संसार में रहे, अपने लीलाओं को प्रकट करते रहे, ऐसे अपने भक्तों के संग में लीला करते रहे, प्रेम का आदान प्रदान करते रहे। उधर युधिष्ठिर महाराज ने जब कहा कृष्ण को कि आप रहो, और कृष्ण ने स्वीकार किया, तो थोड़े समय के बाद युधिष्ठिर महाराज को इतना दुख हो रहा था कि वो सहन नहीं कर पाए थे कि मेरी वजह से, मेरे राजगद्दी में बैठने के कारण इतने लोगों का खून हुआ है, और वो एक क्षण भी शांति से बैठ नहीं पाते थे, उठते बैठते सोचते थे कि क्या करूं। फिर आखिर में अपने भाइयों को लेकर, कृष्ण को भी लेकर, वो रणभूमि पर चले गए, और वहां पर भीष्म देव तीरों की शैया पर विश्राम कर रहे थे। विश्राम तो क्या, अपनी प्राण त्यागने की प्रतीक्षा कर रहे थे, केवल सही क्षण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब उत्तरायण आ जाएगा तो मैं अपने प्राण को त्यागूंगा। तो भीष्म देव ने जो उपदेश दिया भगवान युधिष्ठिर महाराज को, बहुत सुनने योग्य है और अनुसरणीय है। और युधिष्ठिर महाराज ये सुंदर उपदेश भीष्म पितामह से सुना और अंत में भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिया। और फिर भीष्म के अंतिम क्रियाएं करने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज फिर से अपने हस्तिनापुर गांव में आ गए और थोड़े महीने वहां कृष्ण भगवान रहे उनके साथ में, और खास करके उनके भक्त पांडव और उनकी बहन सुभद्रा के लिए। सुभद्रा भी बहुत दुखी थी क्योंकि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु का देहांत हो चुका था, तो सुभद्रा को भी वो शांत करना चाहते थे, इसलिए वहां पर रहे वो। और थोड़े महीनों के बाद में पांडवों के संग में रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि अब मैं निश्चित रूप से निकलना चाहता हूं, अब मुझे कृपा करके मत रोको, द्वारका में मेरा बहुत काम पड़ा है, वहां मेरे रिश्तेदार यदुकुल के निवासी मेरा सदस्य मेरी अपेक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से अनुमति मांगी और युधिष्ठिर महाराज ने अनुमति दे दी। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण को किसी से अनुमति मांगने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, जहां चाहे वहां आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के वश में इस तरह से आ जाते हैं कि आते जाते भी अनुमति लेकर परमिशन लेकर आ जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भारी हृदय से कहा ठीक है। और उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान से आलिंगन किया, कृष्ण ने उनके चरण छुए। अब यह भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कृष्ण भगवान है तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के चरण क्यों छुए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भगवान भी हूं लेकिन युधिष्ठिर के संबंध में मैं तो छोटा भाई हूं, युधिष्ठिर मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका पैर छूं। श्री कृष्ण को लज्जा नहीं हुई झुकने में और अपने बड़े भाई के चरण छूने में। ये वैदिक सभ्यता है, जो हमसे वरिष्ठ होते हैं, उम्र में ज्यादा होते हैं, किसी भी दृष्टि से अगर कोई वरिष्ठ हो तो उनका सम्मान किया जाता है। कोई ज्ञान में हमसे वरिष्ठ है, कोई आयु में है, तो कोई आध्यात्मिक साक्षात्कार में है, कोई भक्ति में है, कोई पद में हमसे श्रेष्ठ है, तो किसी भी तरह से अगर कोई व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है तो उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमारे अहंकार को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं इस उदाहरण को हमारे सामने पेश किया, यद्यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवेतरो जनः। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के श्री कृष्ण ही हैं, और वो ही हमारे सामने आदर्श दिखाते हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए संसार में रहते हुए। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उनके बड़े भाई थे तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के चरण छुए और युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण का आलिंगन किया क्योंकि कृष्ण उनके छोटे भाई थे। और फिर भीम और अर्जुन उनके हम उम्र के थे, इसलिए श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन को भी आलिंगन किया। नकुल और सहदेव श्री कृष्ण के कम उम्र के थे तो नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण के चरण छुए और कृष्ण भगवान ने उनका आलिंगन किया। तो यह सिस्टम था, पद्धति थी उस समय, कैसे जब पहले मिलते थे तो क्या करना पड़ता था, अगर हम किसी जगह छोड़कर जाते थे तो क्या करना पड़ता था, वहां भी पद्धति थी। कितनी एक सूक्ष्म और प्रगतिशील सभ्यता थी ये। आजकल के हाई बाय के जमाने में कुछ ऐसी सभ्यता नहीं रही है। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान फिर अपने रथ पर सवार हो गए। सवार होकर निकलने ही वाले थे कि उस समय वहां के उनके जो रिश्तेदार थे महिलाएं, उनको कहने के लिए वो महल के अंदर चले गए। और ये सारे जो देवियां थीं वो वास्तव में उन लोगों की या तो पत्नियां थीं या बहुएं थीं जिनकी मृत्यु रणभूमि पर हुई थी, या सब लोग ये महिलाएं जो हैं सब विधवा थीं क्योंकि पति जो है रणभूमि पर मर चुके थे। और इन्होंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण का संग साक्षात नहीं किया था, प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं आए थे, कभी उनसे बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बहुत सुना था और हमेशा श्री कृष्ण के बारे में बातचीत करते रहते थे, श्रवण कीर्तन श्री कृष्ण के बारे में चलता रहता था। इसलिए केवल ऐसे श्रवण कीर्तन के बल पर उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। तो देखिए केवल यह श्रवण कीर्तन का मार्ग कितना शक्तिशाली है। रुक्मिणी देवी जो विदर्भा में थी, उन्होंने भी कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था, केवल सुना था कृष्ण भगवान के बारे में, द्वारकाधीश कृष्ण के बारे में। तो सुनते सुनते उनको श्री कृष्ण के गुण, उनके रूप, उनका नाम इत्यादि इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने निर्णय कर लिया था कि मैं श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। हालांकि उनके भाई रुक्मी का सख्त विरोध था इसके लिए, लेकिन फिर भी उसने, रुक्मिणी ने यह बहुत निश्चय कर लिया था कि मैं केवल कृष्ण से विवाह करूंगी। केवल श्रवण करने से इतनी भक्ति, इतना प्रेम जागृत हो गया था हृदय में। उसी तरह से इन महिलाओं के साथ में भी ऐसे हुआ। तो हमारे लिए यह बहुत एक महत्वपूर्ण सबक है। वो क्या है? अगर कोई व्यक्ति कहे कि ठीक है, कृष्ण भगवान तो पांडवों के साथ में थे, तो पांडवों को उनकी प्रति भक्ति करना ये आसान था, लेकिन कृष्ण तो हमारे बीच में नहीं है, तो हम कैसे उनकी भक्ति कर सकते हैं? उसी तरह की तीव्रता जो भक्ति में हम कैसे ला सकते हैं हमारे हृदय में, जबकि भगवान हमारे बीच में नहीं है? तो भगवान ने तो कह ही दिया है, और इस आज के प्रवचन के पहले में हम कह दिया था। भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहां मेरा गुणगान होता है वह वहीं पर उपस्थित रहता हूं। तो हमें यह विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि जहां हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उनका नाम का उच्चारण करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, उनके कथाओं का वर्णन करते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, तो साक्षात श्री कृष्ण वहां प्रत्यक्ष उपस्थित होते हैं, उनका संग प्राप्त होता है। और इस तरह से हमारे सामने उनको न देखते हुए भी हमारे हृदय में उनके प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो सकता है। तो इस तरह से ये महिलाएं जो थीं, ये बहुत अच्छे ढंग से भगवान से प्रेम करती थीं, और उनके आंखों में आंसू आने लगे जब श्री कृष्ण जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया। क्योंकि जब कोई जा रहा होता है तो अगर हम रोते हैं तो उसके लिए अशुभ हो सकता है, तो उन्होंने अपने आप को रोक लिया और आपस में ही श्री कृष्ण के सुंदर रूप को अपने आंखों से वो उसका पान करने लगे। उधर जो अन्य पांडव वगैरह थे, उनको सहन नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण हमसे दूर चले जाए। श्री कृष्ण तो सर्व आकर्षक है, कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। तो श्री कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि एक बार भी अगर कोई उनका गुणगान सुनता है तो उसके बाद में उनका गुणगान सुनने के लिए इनकार नहीं कर सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो वास्तव में भगवान को जानते हैं भक्तों के संग में आकर, और जिन्होंने भौतिक संग, दुस्संग का, असत संग का त्याग किया है, और जिन्होंने एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना है, तो वो दूसरी बार और बार बार श्री कृष्ण के बारे में सुनने को इनकार नहीं कर सकते। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आप सब भी श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, इसलिए आप भविष्य में भी श्री कृष्ण की कथाएं सुनने पर बद्ध हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण की कथाएं इतने आकर्षक होती हैं, कृष्ण के तरह ही आकर्षक होते हैं। इस तरह से पांडव केवल सुन नहीं रहे थे भगवान के कथाएं, बल्कि वो भगवान के निजी संग में रहते थे। 24 घंटे भगवान के साथ में रहते थे, उनके साथ में उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, चर्चा करते थे। तो जब कोई व्यक्ति केवल एक बार कृष्ण की बात सुनने से, कृष्ण की कथा सुनने को छोड़ नहीं सकता, तो पांडव जो कि नित्य उनका संग करते थे, वो भला कैसे श्री कृष्ण से विरह सहन कर सकते थे? वो भला कैसे श्री कृष्ण से दूर रह सकते थे? उनके हृदय में इतना प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति कि वो असहनीय हो गया था। श्री कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि वो सभी को आकर्षित करते हैं। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति नहीं आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब यह है कि भगवान की माया शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि इसकी वजह से वो समझ नहीं पाया है। नहीं तो यह संभव नहीं है कि कोई श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होगा। किसी भी नास्तिक व्यक्ति को भी अगर जाके सुंदर कृष्ण की तस्वीर दिखाएंगे, तुरंत उसका मन आकर्षित हो जाएगा उस क्षण के लिए, लेकिन फिर माया के प्रभाव से उसका तर्क और उसकी नास्तिकता बाहर आएगी और वो कहेगा नहीं नहीं ये कौन है, हम इसको विश्वास नहीं करते। लेकिन हृदय से तुरंत वो आकर्षण आ जाएगा कृष्ण के प्रति, कृष्ण इतने सुंदर हैं। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत में जिसको आत्मा राम श्लोक कहते हैं। आत्मा रामास्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति की अहितुकिं भक्तिं इत्थं भूत गुणों हरिः। इस श्लोक का अर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु ने 67 तरह से विश्लेषण करके बताया था। इसके अलग अलग 67 अर्थ बताए थे चैतन्य महाप्रभु ने, एक नहीं दो नहीं 67 एक ही श्लोक के। और यह श्लोक का अर्थ क्या है संक्षेप में, कि भगवान श्री कृष्ण के गुण इतने आकर्षक है कि हर तरह के व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। आत्मा राम जो अलग अलग तरह के आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, जो अपने अंदर ही अंदर संतुष्ट होते हैं, जो भोग में भी रुचि नहीं लेते हैं, उनको भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण आकर्षित कर देते हैं। चाहे वो निराकारवादी क्यों न हो, चाहे वो कोई ज्ञानी क्यों न हो, योगी क्यों न हो, भोगी क्यों न हो, जब बड़े बड़े निराकारवादी देवी देवताओं के उपासक भी श्री कृष्ण के प्रति इतने स्वाभाविक तौर से आकर्षित हो सकते हैं, तो संसार के छोटे मोटे भोगवादी क्यों नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण इतने आकर्षक है, इत्थं भूत गुणो हरि ही, तो हरि के गुण ऐसे अद्भुत और ऐसे दिव्य हैं कि सभी के मन को हरण कर लेते हैं। और यही हरि शब्द का अर्थ होता है, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया मन हरि। जो हमारे हृदय से जो भी अमंगल है, अशुभ है, अनर्थ है, उनका हरण कर देते हैं और बदले में क्या देते हैं, बदले में उनके प्रति शुद्ध प्रेम दे देते हैं। देखिए, ऐसे कोई व्यक्ति है जो हमारे पास से कचरा लेते हैं और बाद में पैसा देते हैं। हम कितना भी हमारे घर की सफाई करते हैं ना, थोड़ा बहुत कचरा सब गिर जाता है, कोई काम का नहीं होता। कचरा तो बिल्कुल गंदा होता है, किसी को काम का नहीं होता। तो अगर हम कचरे को इकट्ठा करें, बाजार में ले जाएं, जैसे सब्जियां बेचने के लिए सब अपना अपना गल्ला लगाते हैं, और हम सारा घर का कचरा लेके बैठे, तो कोई खरीदेगा हमसे? कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? कचरा है। तो कचरे को खरीदने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्री हरि इतने कृपालु हैं कि अपने हृदय के कचरे को खरीदते हैं और उसके बदले में केवल 5-10 रुपए नहीं, अनमोल धन देते हैं। क्या अनमोल धन देते हैं? उनके प्रति शुद्ध भक्ति, जो कि संसार के करोड़ों करोड़ों रुपए से, संसार के सारे रत्नों से, मोतियों से, हीरे जवाहरातों से ज्यादा कीमती है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य भक्ति के दिव्य रत्न के सामने ये संसार का धन, संसार का चांदी सोना, ये संसार के हीरे मोती सब टूटे कांच के टुकड़े हैं। इसलिए ध्रुव महाराज ने भी प्रार्थना की थी भगवान से। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते थे, क्योंकि उनको संसार का राज्य चाहिए था जो उनके पिता के राज्य से बढ़कर, क्योंकि उनकी विमाता सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया था। उस समय ध्रुव महाराज केवल 5 साल के बालक थे, लेकिन ध्रुव महाराज को यह अपमान असहनीय हुआ था, क्योंकि उसके अंदर क्षत्रिय खून बह रहा था। तो उसने जाके भगवान श्री हरि की उपासना की वन में जाकर, और जब भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए मैं अभी दे दूंगा, बोलो। उस समय अगर ध्रुव चाहते तो सारे ब्रह्मांड के राज को मांग सकते और भगवान श्री हरि उनको दे भी देते। लेकिन उस समय ध्रुव महाराज ने क्या कहा, स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम, त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं स्थान की अभिलाषा कर रहा था, ऊंचे स्थान की। कितनी ऊंचे स्थान की? सारे ब्रह्मांड के राज्य की अभिलाषा थी मेरे अंदर। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम, इसीलिए मैंने अपने आप को तपस्या में स्थित कर दिया और लंबे समय तक बहुत कड़ी तपस्या की केवल इस राज्य के प्राप्ति के लिए। लेकिन त्वाम प्राप्तवान, अभी आप मुझे प्राप्त हो गए हैं, जो कि बड़े बड़े देवता देवी मुनि ऋषिगण उनको भी आपको प्राप्त करना कठिन है, लेकिन मुझे आप प्राप्त हो गए हैं। मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, इसलिए मेरे हृदय में आपके प्रति अभी शुद्ध भक्ति प्रेम जागृत हो गया है, जो कि दिव्य रत्न के बराबर है। और मैं जिस अभिलाषा से आपकी लिए तपस्या कर रहा था, मैं समझता हूं कि ये काचम विचिन्वन, ये बिल्कुल टूटे हुए कांच के टुकड़े के बराबर है। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामी, कृतार्थ स्मि वरम न याचे, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि आपका दर्शन हुआ, आपके प्रति प्रेम हृदय में जागृत हुआ, ये मेरे लिए उचित, ये मेरे लिए बिल्कुल पर्याप्त है, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सारे ब्रह्मांड से भी, सारे ब्रह्मांड के राज्य से और सारे ब्रह्मांड के भीतर जितना भी धन है उससे भी बढ़कर मूल्यवान है। तो भगवान श्री हरि की कृपा देखिए कि हमारे हृदय से जो भी कचरा है वो निकाल लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, सब गंदी चीजें, अनर्थ हमारे हृदय में हैं, जिसकी वजह से हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो इनका हरण करते हैं और फिर क्या देते हैं बदले में? शुद्ध प्रेम देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भी मन हरण करने वाली है श्रीमती राधा। तो हरि हम सबका मन हरण करते हैं और हरि का मन हरण करने वाले है हरा। तो श्रीमती राधा का और एक नाम है हरा। और जब हम हरा को पुकारते हैं, हम कहते हैं हरे। संस्कृत में जैसे किसी का नाम है अंबिका तो बुलाते हैं हे अंबिके, तो उसी तरह से हरा मतलब राधा। तो हम राधा को पुकारते हैं तो कहते हैं हरे। तो जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हम क्या कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कहते हैं हे राधे, हे कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें भक्ति दान प्रदान कीजिए, हमें आपके नित्य सेवा में रखिए। ये है हरे कृष्ण महामंत्र का वास्तविक अर्थ। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि सभी का हृदय जीत लेते हैं। जो केवल उनके बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, उनका जब हृदय जीत लेते हैं और उनके हृदय में ऐसी तीव्र भक्ति की भावना होती है कि भगवान के कथाओं सुनने से वो दूर नहीं रह सकते, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि पांडवों के हृदय में कितनी भक्ति भावना हुई होगी, क्योंकि वो तो दिन रात कृष्ण के साथ में रहते थे प्रत्यक्ष रूप में। तो वो कैसे भगवान श्री कृष्ण के विरह को सहन कर सकते थे? संभव नहीं था समझना। केवल शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं कि उनके हृदय में क्या बीत रहा था। तो उस समय जब ये महिलाएं वापस चली गईं, तो कृष्ण भगवान फिर आए और फिर जो राजाओं के जो भी रानियां थी, कौरव राजा के जो रानियां वगैरह थी, वो सब बाहर आईं, वो छत पे आईं, क्योंकि ऐसे प्रथा थी उस समय कि महिलाएं ज्यादा सड़क पे नहीं आया करती थीं। तो ऊपर से आके वो आपस में कृष्ण भगवान का दर्शन लेने लगी। भगवान श्री कृष्ण ऊपर ने ऊपर देखा और उनका उनके प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और आपस में ये जो रानियां हैं बातचीत करने लगी श्री कृष्ण के बारे में, गुणगान करने लगे। और सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत में बताते हैं कि ये जो रानियां, कौरव रानियां आपस में श्री कृष्ण के बारे में बातचीत कर रही थी, ये वेदों के श्रुति मंत्रों से भी ज्यादा रोचक थे भगवान श्री कृष्ण के कर्णों का के लिए और सभी के लिए। वास्तव में अलग अलग प्रकार के वेद शास्त्र हैं, उपनिषद है इत्यादि। इन सारे शास्त्रों में जिन मंत्रों से भगवान का गुणगान किया जाता है उनको श्रुति मंत्र कहते हैं, और ये श्रुति मंत्र खास करके वेदों और उपनिषदों में होता है। तो लेकिन उपनिषदों में जो श्रुति मंत्र होते हैं वो खास करके उन लोगों के लिए होते हैं जो ज्ञान मार्ग में चल रहे होते हैं, और ज्ञान मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए कोई सीधी बात नहीं चाहिए, उनको घुमा फिरा के बात करने से ही उनको संतुष्टि होती है। इसलिए वो ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग मतलब नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, उनको चाहिए कि कुछ विश्लेषण करें, हर चीज को गहराई में जाकर इसको तोड़ मोड़ करें, हर एक शब्द का व्याकरण निकालें कुछ तोड़ के। तो जो भी श्रुति मंत्र होते हैं वेदों में और उपनिषदों में वो पूरे डायरेक्टली भगवान की गुणगान नहीं करते, भगवान के रूप का वर्णन, भगवान के सौंदर्य का वर्णन, भगवान के लीलाओं का वर्णन, भगवान के नित्य पार्षदों का, उनके धाम का, उनके नाम का वर्णन इतने विस्तार में नहीं आता है। लेकिन ये जो साधारण सी महिलाएं थी, रानियां थी, लेकिन कोई बड़े बड़े विद्वान नहीं थे वो, संस्कृत पंडित नहीं थे वो, लेकिन केवल उनके साधारण सी बोली कृष्ण के बारे में ये सबको वैदिक श्रुति मंत्रों से भी ज्यादा रोचक लगे। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के गुणगान कर रहे थे, वो श्री कृष्ण को संबोधित किए जा कर रहे थे इसीलिए, और ये बहुत सरल भक्ति भाव से अर्पण किए जा रहे थे। इसलिए ऐसी जो भावना है वो बड़े बड़े मंत्रों से, स्तुति पाठ से भी ज्यादा भगवान को प्रसन्नता देती है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किसी भी भाषा में क्यों न हो, अगर वो भक्ति भाव से की जाती है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उससे प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इतने सारे बड़े बड़े संत रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त रहे हैं इतिहास में, ऐसा नहीं है कि सभी ने केवल शुद्ध संस्कृत में भगवान के प्रति प्रार्थनाएं किए हों, जैसे कि पुरंदरदास इत्यादि इन्होंने कन्नड़ में किए, तुकाराम ने मराठी में किए, नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि ने बंगाली में किए, नरसिंह मेहता ने गुजराती में किए। तो अलग अलग प्रांतों के हिसाब से जो भगवान के शुद्ध भक्त रहे हैं उन्होंने अलग अलग भाषाओं में भगवान की स्तुति की है, और जहां भी स्तुति की है अलग अलग भाषाओं में उन्होंने बहुत सरल भाषा में की, ताकि जो साधारण जनता है वो भी समझ ले इनको। इसलिए हम देखते हैं कि ये सारे भक्ति मार्ग में जो भी बड़े बड़े संत रहे इतिहास में पिछले 600-700 सालों में ही, इनकी भाषा इतनी सरल थी कि आम व्यक्ति भी इनको समझ सकता था। तो इसलिए बताया जाता है कि ये भी सारे जो भक्ति भाव के जो प्रार्थनाएं हैं जो सरल भाषा में लिखी हुई हैं, ये भी वेदों के श्रुति मंत्रों के बराबर है। भाषा का कोई अंतर नहीं पड़ता, भगवान भाषा को नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखना चाहते कि आपको संस्कृत व्याकरण कितना अच्छी तरह से आता है या आप कौन सी भाषा कितनी शुद्धता से बोलते हैं, नहीं, भगवान देखते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं उसका विषय क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं और आपकी बोलने की भावना क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई ब्राह्मण है, पंडित है, वो वेदों के मंत्र का उच्चारण करता है, स्वाहा स्वाहा करके बहुत सारे मंत्र बोलता है, लेकिन भक्ति में हृदय की भावना बिल्कुल भक्ति भावना नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे मंत्रों से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हमें श्लोक याद नहीं रहते हैं। कई बार भक्त लोग निराश हो जाते हैं, हम कितनी बार ग्रंथों को पढ़ते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता, श्लोक याद नहीं रहते, हम जो पढ़ते हैं 5 मिनट बाद भूल जाते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, हमें अपना प्रयत्न करना चाहिए, हर रोज भगवान श्री कृष्ण के ग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिए, श्लोकों को याद करते रहना चाहिए। जितना हम करते हैं अजित को भी हम जीत सकते हैं, जिस तरह से पांडवों ने उनको जीत लिया था। उधर जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने रथ में चढ़े तो और भी ब्राह्मण वहां आए, वेद स्तुति पाठ करने लगे, लेकिन जो ऊपर रानियां जो बोल रही थी सरल भाषा में कृष्ण के गुणगान में, वो कृष्ण को ज्यादा अच्छा लगा। और ये जो ब्राह्मण स्तुति पाठ कर रहे थे, इस स्तुति पाठ में ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आशीर्वाद दे रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा आशीर्वाद न तो योग्य था और न अयोग्य था। अब ये इससे थोड़ा आश्चर्य में हो सकता है कि ऐसे विचित्र ढंग से क्यों कहा है सुखदेव गोस्वामी ने। वो योग्य इसलिए था कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई थे और इसलिए युधिष्ठिर महाराज जो कि राजा थे उनकी ओर से ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे क्योंकि छोटे भाई हैं। तो इस तरह से उनका वरदान देना श्री कृष्ण को, ब्राह्मणों का आशीर्वाद देना श्री कृष्ण को, वो योग्य था। दूसरा कारण कि योग्य था कि श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, द्वारका के राजा थे और ये ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है कि जो प्रामाणिक राजा होते हैं उनको आशीर्वाद देना। तो ब्राह्मण होने के नाते वो क्षत्रिय को आशीर्वाद दे रहे थे इसलिए इनका आशीर्वाद देना योग्य था। लेकिन अयोग्य क्यों था? अयोग्य इसलिए था कि श्री कृष्ण हालांकि क्षत्रिय थे और युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई थे फिर भी वो भगवान ही थे। कभी भगवान आकर किसी के छोटे भाई बनते हैं, किसी के बच्चे बनते हैं, किसी के कुछ भी बहनते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो किसी के छोटे भाई बन जाते हैं या बच्चे बन जाते हैं उनके स्थान में कोई घटन होता है या उनकी शक्ति में कोई घटन होती है। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान ही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान ही रहते हैं, इसलिए ऐसे आशीर्वाद देना उचित नहीं था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद श्री कृष्ण के प्रति योग्य भी था और नहीं भी था। इस तरह से जब श्री कृष्ण रथ पर बैठे तो अर्जुन ने उनके ऊपर एक छाता रखा, सुंदर सा छाता जो कि हीरो रत्नों से अलंकृत था, सुशोभित था। और फिर सात्यकी और उद्धव जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्होंने चामर से भगवान को पंखा चलाया और इस तरह से ऊपर से सभी लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। और श्री कृष्ण के हस्तिनापुर छोड़ने का समय आ गया तो सारे पांडव बिल्कुल स्तब्ध रह गए, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, उनको सहन नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण हमको छोड़ के अभी जा रहे हैं। तो इस तरह से वो कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, इस तरह से घूम फिर रहे थे, एक जगह में स्थिर खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनका हृदय इतना विचलित था कि उनको पता नहीं चल रहा था कि हमें खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, क्या करें। तो इस तरह से धीरे 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 से श्री कृष्ण आगे बढ़ने लगे और युधिष्ठिर महाराज ने अपने भक्ति भावना से श्री कृष्ण के संरक्षण के लिए बहुत बड़ी सेना साथ में भेजी ताकि श्री कृष्ण के ऊपर कोई शत्रु आक्रमण न करे। यह पहला कारण था। और दूसरा कारण था कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम हेतु उन्होंने सैनिकों को भेज दिया। जिस तरह से अगर कोई बड़ा भाई होता है और देखता है कि भाई छोटा है लेकिन फिर भी काफी बड़ा है, उम्र में अपने आप को रास्ता पार करके जा सकता है, फिर भी भाई को कहता है जरा संभाल के रास्ता पार करना, इधर उधर देखना, पहले बाएं देखना फिर दाएं देखना, गाड़ियां आ नहीं रही है फिर आगे जाना। हालांकि छोटा भाई भी बड़ा हो चुका है, वो जानता है कैसे रास्ता पार करना है, फिर भी प्रेम है इसलिए छोटे भाई को बताता है कि देखो जरा अच्छी तरह से देख पर आगे चलना। उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज भी प्रेम करते थे इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण के साथ में सेना भेजी। अब देखिए श्री कृष्ण की रक्षा करने की किसी की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, क्या कोई उनकी रक्षा कर सकता है? उल्टा श्री कृष्ण ही सबके रक्षा कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रेम में उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना तीव्र था कि हालांकि वो जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है फिर भी वो यही सोचते थे कि मेरा कर्तव्य है कि श्री कृष्ण की रक्षा करो। तो श्री कृष्ण ने इस भावना को स्वीकार किया। युधिष्ठिर महाराज भूल गए कि मैं सोच रहा हूं कि श्री कृष्ण की रक्षा मैं करूंगा लेकिन वास्तव में सत्य तो उल्टा है। श्री कृष्ण ने तो आज तक हमारी रक्षा की है, अब भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। सबका संरक्षण करने वाले एकमात्र श्री कृष्ण है। रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा, रक्षा करने वाले एकमात्र श्री कृष्ण ही है। लेकिन भक्ति भाव जब ज्यादा तीव्र हो जाती है तो भक्त अपने आप को श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं समझता बल्कि श्री कृष्ण को अपने आप के ऊपर निर्भर समझता है और इसलिए उसकी उनकी रक्षा के लिए ऐसे कुछ न कुछ इंतजाम करता रहता है। तो तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण के संग जाने के लिए बड़ी सेना का आयोजन किया और फिर सारे पांडव श्री कृष्ण के साथ चलने लगे चलने लगे चलने लगे, काफी दूरी तक चलते रहे। और फिर श्री कृष्ण ने कहा कि चलो अभी बहुत देर हो गई, बहुत दूर तक चले आए, अभी जरा वापस चले जाओ। तो इस तरह से भारी हृदय लेकर सारे पांडव उदास निराश होकर वापस चले गए हस्तिनापुर। और उधर आगे श्री कृष्ण अपने रथ पे सवार होकर चलते गए अनेक प्रांतों से गुजरते हुए अपने धाम द्वारका में पहुंच गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पांडवों का प्रेम कितना तीव्र था श्री कृष्ण के प्रति। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी नाम माम नमस्कुरु, तो हम समझ सकते हैं कि ये सब कैसे करना है, किस तरह से मन ही मन हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये पांडव जैसे भक्तों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो यहां केवल अगर हम श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण हमारे संग में भी उपस्थित हैं अपने अर्चा विग्रह के रूप में, राधा गोकुल आनंद के रूप में वो हमारे सामने उपस्थित हैं, अपनी कथा के माध्यम में वो हमारे सामने उपस्थित हैं, और उनके नाम के माध्यम में उन्होंने तो अवतार लिया हुआ है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, जो उनके नाम संकीर्तन करता है, उनके बारे में कथाओं का श्रवण करता है, उनके भक्तों का संग करता है, वो प्रसाद का सेवन करता है, तो उसने श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर लिया। इसलिए बारंबार भक्तों के संग में आना अति आवश्यक है। इसलिए जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, कि अपना जीवन ऐसे ही बीतना चाहिए। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो यत् क्षणो नीयता उत्तम श्लोक वार्तया। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान की श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं, हर एक सूर्यास्त और सूर्योदय के साथ उनका एक दिन खत्म हो जाता है और वो मृत्यु के एक दिवस और करीब आ जाते हैं, अर्थात उनका और एक दिवस व्यर्थ गया। लेकिन जो श्री हरि के नाम संकीर्तन में कथा में हमेशा मग्न रहते हैं, उनका दिन उनका जीवन ऐसे ही बिताते हैं, तो जैसा हर एक दिन बीतता है हर एक सूर्योदय के साथ, वो नित्य जीवन के द्वार की ओर बढ़ते जाते हैं। बल्कि जो नास्तिक लोग हैं या भोगवादी हैं, जो कृष्ण कथा में रुचि नहीं लेते, वो केवल मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो भक्त होते हैं, जैसा अपना ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण कथा में बिताते रहते हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य संग प्राप्त करने के स्तर की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये कितना सुंदर जीवन है, कितना रोचक जीवन है कि हम केवल भक्तों के संग में आए, आनंद से श्री कृष्ण के सुंदर कथाएं सुने, उनका नाम का संकीर्तन करें, प्रसाद खाएं, कीर्तन करें, क्या और चाहिए जीवन में। इस तरह से भक्त को चाहिए कि अपना जीवन सरल 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 बनाते रहे। हर दिन भक्त को कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मेरे जीवन को सरल बनाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय मैं कृष्ण कथा में कृष्ण भक्ति में लगा सकूं, जो कि मेरे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन को और भी गहराई में हम भौतिक संसार में अटक जाएं, व्यवसाय को और भी बढ़ाना और नाना प्रकार के संसारी चीजों में अटक जाना। नहीं, हमें चाहिए कि संसार के जिम्मेदारियों को कम करके, फिर भी जिम्मेदारी से इनको निभाकर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। इस तरह से हमारा जीवन सफल हो जाएगा और मृत्यु के बाद हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में लौट के जा सकते हैं और उनका नित्य संग प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यदि सभ्यता के अनुसार वरिष्ठों का सम्मान करना, आपने जो बताया, इसके बारे में अनुभव ऐसा होता है कि यहाँ आने के बाद नम्रता की याद आती है, लेकिन बाहर जो भक्त नहीं है या नए भक्त है या और ऐसे कोई है जो उम्र में बड़े हैं या और कई कारणों से, या बुद्धि से हो और भौतिक कोई ज्ञान से हो, तो क्या उनके प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए? और अगर उनके प्रति सम्मान रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो उसका और हमारे भक्तिमय जीवन का क्या संबंध होता है और हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए?
एक बार प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा पत्रकार ने कि आपका शिष्य कौन है, आपके शिष्य की पहचान कैसे कर सकते हैं, आपके शिष्य का परिचय दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा शिष्य सज्जन है, जेंटलमैन, भद्र। इसका मतलब है कि चाहे हम भक्तों के संग में हों या अभक्तों के संग में हों, हमें सज्जन होना चाहिए, भद्र होना चाहिए। तो इस तरह से सम्मान किसी को भी दिखाने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हर तरह के व्यक्ति को हम सम्मान दिखाएंगे, क्योंकि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं, हम उनसे अच्छे हैं। ऐसे भावना से भी हमारे हृदय में घमंड आ सकता है, इसलिए सभी को सम्मान देना चाहिए, ये हमारे लिए उचित है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति का विरोध करे तो दूर से सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए। सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी बातें हम माने। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कोई कहे ये भक्ति क्या चीज है, ये छोड़ो, केवल 24 घंटे पैसा कमाओ। अगर कोई बोले कि आज हमने मंदिर गए थे, क्लास में सुना था कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, तो हमने आज इनकी बात सुनी है, तो सम्मान करना है तो इनकी बात सुननी है, तो हम भक्ति छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। सम्मान करने का मतलब है कि अच्छी तरह से उनसे व्यवहार करना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे कुछ बोले जो कि भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध है, तो उसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। भले हम सामने से उनका विरोध करें न करें, वो परिस्थिति देश काल पात्र के हिसाब से बुद्धि से अपना समझना चाहिए। लेकिन भक्त को चाहिए कि सारे समाज में ऐसे प्रसिद्ध हो कि ये लोग बड़े सज्जन हैं, कृष्ण के भक्त बड़े भद्र हैं, सभ्य हैं ये लोग, ऐसे भक्तों का परिचय होना चाहिए सारे समाज भर में, फिर लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे। क्योंकि जन साधारण है वो कृष्ण को नहीं देखती है, वो भक्तों को देखती है। भक्तों के गुणों से, भक्तों के व्यवहार से वो या तो कृष्ण के पास में आएंगे या कृष्ण से दूर चले जाएंगे। इसलिए भक्त के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि वो ऐसे अच्छे तरह से समाज में व्यवहार करे, कोई गलत काम नहीं करे और तिलक पहन के जाए और फिर कुछ गलत काम करे, तो फिर वो ठीक नहीं है। लोग कहेंगे कि ये देखो कृष्ण का भक्त है लेकिन गलत काम करता है। तो इसलिए भक्त को चाहिए कि समाज में हमेशा सज्जन की तरह रहे। छोटे छोटे नियम भी संसार के तोड़े नहीं। कभी कभी हमने देखा है भक्त लोग कहते हैं लाल बत्ती है, हम कृष्ण भक्त हैं, चलो निकल जाओ, कृष्ण के लिए कोई नियम नहीं, भक्त के लिए कोई नियम नहीं। नहीं, जो भी संसार के समाज के नियम होते हैं पालन करना चाहिए अच्छे ढंग से।
हम यहां बार बार ही सुनते रहते हैं और हरिनाम लेने से और भगवत कथा का श्रवण करने से, भक्तों का संग करने से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, ऐसा बार बार हम सुनते भी रहते हैं। यहां आने के बाद ऐसी इच्छा भी होती है, लेकिन तो भी बाहर जाने के बाद फिर हमारा अहंकार क्यों जागृत होता है? मान सम्मान, प्रतिष्ठा और ऊंचा नीचा, या मेरा पराया अपना, ये सब क्यों भाव आता है?
क्योंकि सत्संग जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। अगर ज्यादा सत्संग करें, अच्छे ढंग से जो सत्संग में सुन रहे हैं उसका अमल करें, आचरण करें, तो नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना ज्यादा समय हो हम कृष्ण की सेवा में, भक्तों के संग में, ऐसे चीजों के लिए लगाएं। फिर धीरे धीरे से हम बाहर के संसार के प्रभाव से थोड़ा बच के रहेंगे। ठीक है, और कोई
प्रभु को मान सम्मान देने से, हम दूसरों को मान सम्मान देने से हमारा दुरुपयोग कर लेते हैं उसके।
हमने ये नहीं कहा कि भक्त को मूर्ख होना चाहिए, भक्त को सम्मान देना चाहिए लेकिन मूर्ख नहीं बनना चाहिए। अगर हम उसको सम्मान दे रहे हैं, इस सम्मान का फायदा उठाकर लोग कोई हमें धोखा देना चाहता है, तो वो शेर तो भक्त सवा से है। कृष्ण ने आखिर क्या किया? लोगों ने कृष्ण को धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने चौपट उनका कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनका चौपट करना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई हमारा धोखा हमें धोखा देना चाहता है, हमारी चोरी करना चाहता है, तो हमें जो भी सुरक्षा के लिए आवश्यक है वो करना चाहिए। लेकिन अपने आप को और कृष्ण भगवान के संपत्ति को बचा के रखें।
स्मृति और श्रुति में क्या,
स्मृति और श्रुति में क्या अंतर है? स्मृति मतलब जो स्मरण किया जाता है और श्रुति मतलब जो श्रवण किया जाता है। स्मरण से आता है स्मृति, श्रवण से आता है श्रुति। उपनिषदों को श्रुति कहते हैं और पुराणों को स्मृति कहते हैं। वास्तव में एक ही है, क्योंकि अगर पुराणों में कोई बात कही हो कि उपनिषदों में ऐसा ऐसा कहा गया है, तो वो श्रुति भी है, स्मृति भी है।